जलवायु संकट पर ताजा स्थिति क्या है? जो यूनेप की हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें क्या कहा गया है?
जो यूनेप की रीसेंट एमिशंस गैप रिपोर्ट निकली है उसमें जो साइंटिस्ट ने अध्ययन किया है क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स पे, तो उसमें ये बिल्कुल साफ निकल के आया है. 194 कंट्रीज़ ने क्लाइमेट चेंज पे, जो पेरिस में अग्रीमेंट हुआ था, जो प्लेजेस वहाँ लिए थे, उन प्लेजेस के बावजूद भी हम इस सदी में एटलीस्ट 3.2 डिग्री टेम्परेचर राइज़ की तरफ बढ़ रहे हैं. तो जो हमारा टारगेट है कि हम 1.5 डिग्री का प्रयत्न करें और 2 डिग्री तो मेंटेन करें ही, वो हमें हाथ से निकलता हुआ लग रहा है. अगर हमें 1.5 डिग्रीज और 2 डिग्रीज के अंदर रहना है, तो जो यूनेप की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये बहुत प्रत्यक्ष रूप से निकला है कि हमें हर साल 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन करना पड़ेगा. और जो हमारा ग्लोबल कलेक्टिव एम्बिशन है, जो प्लेजेस हैं, वो कम से कम 5 times हमें और एम्बिशियस करने पड़ेंगे, नहीं तो ये टारगेट हासिल करना बहुत मुश्किल है.
तो इस लक्ष्य को हासिल करने में क्या रोड़े रास्ते में आ रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं?
बहुत चुनौतियाँ हैं. जैसे अभी मैड्रिड में जब कॉप हुआ था तो उस पर काफ़ी इशूज़ पे इंटरनेशनल समझौता नहीं हो पाया, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट मार्केट्स पे कंट्रीज़ अग्री नहीं कर पाए. मुझे लगता है एक एक अगर हम एक ऊंचे स्तर पर बात करें, तो क्योंकि ये एक लोकल मुद्दा, स्थानीय मुद्दा नहीं है, एक ग्लोबल इशू है, सो इसमें सारे देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना और एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते की तरफ ले जाना मुश्किल है, क्योंकि हर देश के अपनी प्राथमिकताएँ हैं, अपने सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, अपनी चुनौतियाँ हैं. तो वो सब सबको एक साथ लाना एक चुनौती है अपने आप में. लेकिन अगर हम लोकल इश्यूज़ को भी आप देखें, जैसे वाटर अवेलेबिलिटी देखें या मटेरियल यूज़ देखें, तो अब लोकल कंस्ट्रेंट्स भी हमें क्लाइमेट चेंज के साथ, वो भी अब लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी अफेक्ट हो रहे हैं. सो अब देशों को आई थिंक आगे बढ़ते हुए हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है. हमें जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड हैं क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ने के लिए, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो चुनौतियां हैं, यही बिग चुनौतियां हैं. इसी की वजह से हम एज कंट्रीज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.
तो कोस्टा रिका का जो हमने उदाहरण देखा, उससे क्या भारत को कुछ मदद मिल सकती है? यहाँ का जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवेश है, उसमें भारत उससे क्या कुछ सीख सकता है?
जैसा आप जानते हैं, कोस्टा रिका बहुत छोटा देश है भारत से कंपेयर करते हुए. कोस्टा रिका की पॉपुलेशन सिर्फ 5 million है, तो जो स्केल का इशू है वो भारत में बहुत ज़्यादा है. लेकिन फिर भी आई थिंक एक पॉजिटिविटी, अगर एक देश ऐसा कर लेता है और डीकार्बोनाइज हो जाता है, तो जो उसकी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एग्जाम्पल जो वो सेट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक जो कोस्टा रिका ने जो ये प्लान बनाया है, जिस तरह बनाया है, उससे हम सीख सकते हैं. इट्स एन इंटीग्रेटेड प्लान जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट हर सेक्टर को मद्देनजर रखा है. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, सो सब इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जहां से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है, उन सबको एक साथ लेकर एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है. तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं. लेकिन अपने स्तर पर भारत भी बहुत कुछ कर रहा है. जैसे हम जानते हैं, गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी पे, एनर्जी इंटेंसिटी पे, ई मोबिलिटी पे काफ़ी कार्यक्रम और काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं. आई थिंक इन्हीं को आगे बढ़ाना है और आपस में देशों को एक दूसरे से जो भी प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है वो लेके हमें आगे बढ़ना है. तभी ये जो एक वैश्विक चुनौती से जूझ रहे हैं, तभी हम उसका सामना कर पाएंगे.
तो अगर वैश्विक तौर पर बात करें, वहाँ पर भी क्या कोस्टा रिका का मॉडल फिट होता है इस समस्या से निपटने के लिए?
बिल्कुल होता है, क्योंकि कोस्टा रिका जिस तरह का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस अपने प्लान में डाले हैं, जैसे धीरे धीरे उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो टोटली ई मोबिलिटी की तरफ जाएगा, इसी तरह के हमें ट्रांसफॉर्मेटिव सेक्टोरल चेंजेस एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक प्लानिंग, हमें इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक थिंकिंग, इसी तरह के चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे एट द लेवल ऑफ यू नो डिफरेंट स्केल्स, चाहे वो लोकल इकोनॉमी, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे. एज अ कंट्री कोस्टा रिका बहुत छोटा है, तो अगर कोस्टा रिका में ये चेंजेस होंगे तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग पे एज सच इतना फर्क ना पड़े. पर जैसे कि मैंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल जिससे हम सीख सकते हैं, और छोटे स्तर पे ही अगर हम अपने देश में भी शुरू करें तो उसका प्रभाव काफ़ी हो सकता है।
दक्षिण एशिया की बात करें अगर खासतौर से भारत की, तो यहाँ पर यूनिप किस तरह सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और किस तरह के प्रयासों में लगा है इस संकट से निपटने के लिए?
तो जैसे आप की जानते हैं कि यूनिप साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा यही लक्ष्य रहता है कि हम इस विषय पर जो लेटेस्ट साइंस है, अध्याय है, वो हम गवर्नमेंट्स तक लेके जाएं ताकि गवर्नमेंट्स उस साइंस को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज फ्रेम करें। और ये एमिशंस गैप रिपोर्ट इसी डायरेक्शन में हमारा एक स्टेप है। तो हम इस तरह का साइंस बेस्ड काम करते जा रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, बाकी देशों को भी वो जो एविडेंस उसमें से निकल रहा है वो उनको दे रहे हैं। उसके अलावा भारत में हम अब काफी स्टेट्स के साथ उनके जो स्टेट एक्शन प्लान्स हैं उनमें उनकी मदद कर रहे हैं, टेक्निकल इनपुट्स देके कि किस तरह से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट करें, नॉट जस्ट क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग को उन प्लान्स में इंटीग्रेट करें। उसके अलावा हम काफी सेक्टोरल वर्क कर रहे हैं, जैसे ई मोबिलिटी, अगर हम अगेन महाराष्ट्र के साथ, यूपी के साथ उनके ई मोबिलिटी प्लान्स पे, तो काफी अप्रत्यक्ष रूप से जो क्लाइमेट चेंज पे जिनका प्रभाव पड़ सकता है उन सेक्टर्स का, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष रूप से उन सेक्टर्स पे, सो ई मोबिलिटी है, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स हैं, कूलिंग है जिस जो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पे हम काफी काम कर रहे हैं।
जलवायु संकट पर जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं ज्यादातर सब में बहुत निराशाजनक हालात, बहुत निराशाजनक दिख रहे हैं। क्या कुछ सकारात्मक भी है, कुछ पॉजिटिव है रिपोर्ट्स में?
जो अभी लेटेस्ट कॉप हुआ उसमें ओवरऑल मूड मैं कहूंगी थोड़ा नेगेटिव ही था, क्योंकि जिस तरह के हम अपेक्षा कर रहे थे कि जिस तरह के अग्रीमेंट होंगे वो हुए नहीं, लेकिन आई थिंक पॉजिटिव ये है कि कुछ देश अपने आप आगे निकल के आ रहे हैं, जैसे कोस्टारिका का एग्जाम्पल है, यूरोपियन यूनियन काफ़ी प्रोग्रेसिव है, उन्होंने काफ़ी अगेन एम्बिशियस अपने लिए प्लान्स रखे हैं। व्हाट इज़ इनकरेजिंग इज़ कि काफ़ी जैसे यूएस है, एट अ नेशनल लेवल उनका पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, लेकिन एट अ सिटी लेवल, एट अ स्टेट लेवल उनका पार्टिसिपेशन, मतलब काफ़ी सिटीज़ और स्टेट्स आगे बढ़कर आ रहे हैं यूएस में से भी। तो इस तरह से आई थिंक स्मॉल पार्टनर्स, वेदर इट इज़ इंडस्ट्री या सिटीज, स्टेट्स, स्मॉल कंट्रीज़, तो इस तरह का जो हम ये वेव देख रहे हैं, तो हमारी ये आशा है कि ये वेव बढ़ती जाएगी और इसमें और लोग और कंट्रीज, स्पेशली बिगर कंट्रीज इसको ज्वाइन करेंगे और जिस तरह का हमें इम्पैक्ट चाहिए वो होगा आगे चल के।